लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि कलीसियाई समुदाय उन युवा लोगों की इच्छाओं और आशंकाओं का स्वागत करें जो पौरोहित्य और धार्मिक जीवन में यीशु मसीह के मिशन की सेवा करने की बुलाहट महसूस करते हैं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है बुधवारीय आम दर्शन समारोह में संत पापा फ्रांसिस की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा फ्रांसिस रोम के जेमेली अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उनके अस्पताल में रहने के बावजूद उन्होंने आम दर्शन समारोह की अपनी धर्म शिक्षा माला को प्रकाशित करना जारी रखा है। संत पापा फ्रांसिस ने अपने बुधवार ये आम दर्शन समारोह की धर्म शिक्षा माला के संदेश में लिखा, प्रिय भाइयों एवं बहनों, हम यीशु ख्रिस्त हमारी आशा की सुंदरता को उनके मंदिर में समर्पित किए जाने के रहस्य पर चिंतन करते हुए करेंगे। यीशु की बाल्यावस्था का जिक्र करते हुए सुसमाचार लेखक संत लूकस हमारे लिए संहिता में ईश्वर के नियमों के अनुपालन में मरियम और योसेफ की अक्षरशः आज्ञाकारिता को प्रस्तुत करते हैं। वास्तव में इसराइल में यह जरूरी नहीं था कि बच्चे को मंदिर में समर्पित किया जाए, लेकिन वे जो ईश्वर के वचनों के अनुरूप अपने जीवन को संचालित करते थे और उसके द्वारा अपने में सुदृढ़ता का अनुभव करते थे, वे इससे एक महत्वपूर्ण बात समझते थे। इसे हम नबी सामुएल की माँ को करता हुआ पाते हैं, जो अपने में निसंतान थी। ईश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसे पुत्र रतन प्राप्त हुआ। वह उसे ईश मंदिर में सदा के लिए ईश्वर को समर्पित करने हेतु ले जाती है। संत लूकस इस भांति यीशु के प्रथम पूजन कार्य की चर्चा करते हैं, जो यरूशलेम शहर में होता है, जो उनके पूरे प्रेरितिक कार्य का केंद्र बिंदु है, जहां से वे अपने कार्यों के निष्पादन में वहां जाने का निर्णय करते हैं। मरियम और योसेफ यीशु को अपने परिवार, लोगों और ईश्वर तक सीमित नहीं रखते हैं, वे उनकी देखरेख करते हैं, उन्हें विश्वास तथा पूजा अर्चना का पाठ पढ़ाते और आध्यात्मिकता में बढ़ने हेतु उनकी मदद करते हैं। वे स्वयं अपने को एक बुलाहट की समझ में विकसित होता पाते हैं। यह दर्द के बिना नहीं होता है, जो उन्हें अपने से परे ले चलता है। संत पापा फ्रांसिस अपनी धर्म शिक्षा माला में आगे कहते हैं कि ईश मंदिर प्रार्थना का एक घर है, जहां हम पवित्र आत्मा की सांसों को पाते हैं, जो एक बुजुर्ग व्यक्ति सिमियोन के हृदय में अपनी बातों को व्यक्त करते हैं, जो विश्वासी भक्तों के समुदाय, आशा और प्रतीक्षा के एक अंग हैं। वे नबियों के द्वारा इसराइल को किए गए ईश्वरीय प्रतिज्ञा को पूरा करने की इच्छा से अपने को वहन करते हैं। सिमियोन मंदिर में ईश्वर के अभियंजित की उपस्थिति का एहसास करते हैं। वे अपने लोगों के मध्य छाए अंधकार के बीच में एक ज्योति को चमकता हुआ पाते हैं। वे उस बालक से मिलने जाते हैं जो हमारे लिए जन्म लिया है, जिसके बारे में इसायस नबी ने भविष्यवाणी की, वह एक पुत्र है जो हमारे लिए दिया गया है, वह शांति का राज कुमार है। सिमियोन बालक को गले लगाते हैं, जो छोटे और निस्सहाय उनके कंधों में आराम करते हैं, लेकिन वास्तव में वे उनमें अपने सांत्वना और पूर्णता का अनुभव करते हैं। वे इसे हृदय के उद्गार स्वरूप एक भजन में व्यक्त करते हैं, जो कलिस्य के लिए दिन के अंत की प्रार्थना बन गई है। प्रभु, तू अब अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति के साथ विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। यह गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति है और तेरी प्रजा इसराइल का गौरव। संत पापा कहते हैं कि सिमियोन उन लोगों की खुशी को व्यक्त करते हैं जिन्होंने उन्हें देखा है, उन्हें पहचाना है और उन्होंने दूसरों के लिए उद्धारकर्ता स्वरूप साझा किया है। वे विश्वास के एक साक्षी हैं जो उसे उपहार के रूप में मिला है जिसे वे दूसरों को बांटते हैं। वे उस आशा के साक्षी हैं जो निराश नहीं करती है। वे ईश्वर के साक्षी हैं जो मनुष्य के हृदय को आनंद और शांति से भर देता है। इस आध्यात्मिक सांत्वना से भरे बुजुर्ग सिमियोन मृत्यु को अंत के रूप में नहीं बल्कि पूर्णता परिपूर्णता के रूप में देखते हैं। वे एक बहन की तरह उसका इंतजार करते हैं जो उसे नष्ट नहीं करती बल्कि उसे उस सच्चे जीवन से परिचित कराती है जिसका उसने पहले ही स्वाद चखा है और जिसमें वह विश्वास करता है। उस दिन सिमियोन केवल अकेले नहीं होते जो शरीरधारी बालक में मुक्ति के दर्शन करते हैं। यह बात अन्ना के साथ भी होती है। वह एक धर्मी नारी जिसकी आयु 80 साल से अधिक हो गई है, जो एक विधवा है, जो पूरे समय मंदिर में सेवा और प्रार्थना के कार्यों में समर्पित है। वास्तव में बालक को देखकर अन्ना इसराइल के ईश्वर की स्तुति करती है जिन्होंने उस छोटे बच्चे में अपने लोगों को बचाया है। वह उसके बारे में बड़ी उदारता से दूसरों को बतलाती है। दो बुजुर्गों के द्वारा मुक्ति का गान इस भांति हमें पूरे विश्व और लोगों के लिए जयंती की घोषणा करती है। यीशु के मंदिर में हम मुक्ति की आशा को पुनः प्रज्वलित पाते हैं क्योंकि ख्रीस्त हमारी मुक्ति की आशा वहां प्रवेश करते हैं। प्रिय भाइयों एवं बहनों, हम सिमियोन और अन्ना का अनुसरण करें जो आशा के तीर्थ यात्री हैं, जिनमें हम स्पष्ट आंखों से देखने की क्षमता को पाते हैं, जो छोटी चीजों में ईश्वर की उपस्थिति को देखने के योग्य होते हैं। वे जानते हैं कि ईश्वर का स्वागत किस रूप में किया जाए जो हमारे भाई बहनों के हृदयों में खुशी और आशा को पुनः प्रज्वलित करने आते हैं।
हमको आशीष देता तू खिलती कलियां क्या कहे तू अनश्वर आत्मा एक आत्मा से भर दे परमेश्वर धन्य है तेरा काम धन्य है तेरा नाम
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। आज सुबह 26 फरवरी को पत्रकारों को भेजे गए एक संदेश में वाटिकन प्रेस कार्यालय ने बताया कि जमेली पॉलीक्लिनिक में संत पापा फ्रांसिस ने शांतिपूर्ण रात बिताई और वे आराम कर रहे हैं। कल शाम को वाटिकन प्रेस कार्यालय ने एक नोट में घोषणा की कि संत पापा की नैदानिक स्थिति गंभीर लेकिन स्थिर बनी हुई है, कोई तीव्र श्वसन प्रकरण नहीं हुआ और हेमोडायनामिक पैरामीटर स्थिर बने हुए हैं और संत पापा ने द्विपक्षीय निमोनिया की रेडियोलॉजिकल निगरानी के लिए एक अनुसूचित नियंत्रण सीटी स्कैन कराया और निदान सुरक्षा रखा गया है। जब हम एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग या डिजाइन करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि हम जिम्मेदार बने रहें। संत पापा फ्रांसिस ने CEPROME और नाबालिगों की सुरक्षा के लिए पोंटिफिकल कमीशन द्वारा आयोजित चौथे लैटिन अमेरिकी सम्मेलन के प्रतिभागियों को अपने संदेश में इस बात पर जोर दिया जिसका विषय था कृत्रिम बुद्धिमत्ता और यौन शोषण रोकथाम के लिए एक नई चुनौती, जो 25 से 27 फरवरी तक लीमा पेरू में हो रहा है। 13 जनवरी को हस्ताक्षरित संदेश में संत पापा ने कहा, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे समाज से इस अभिशाप को मिटाने के उद्देश्य से किए जा रहे सभी प्रयासों को बनाए रखें और विशेष रूप से आप जिस पहल को बढ़ावा दे रहे हैं और उसके फल को आशीर्वाद दें। यह याद करते हुए कि उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता को विषय के रूप में चुना है, उन्होंने कहा कि सुनामी की तरह इसने इंटरनेट की निरंतर विकसित होने वाली वास्तविकताओं में क्रांति ला दी है। उन्होंने कहा कि एक बुजुर्ग पुरोहित के लिए इन विषयों पर तकनीकी घटकों को समझना मुश्किल हो सकता है और इस समानांतर ब्रह्मांड में हर प्रगति पर अपडेट रहना महत्वपूर्ण है, जिसे हम वेब कहते हैं। हालांकि सत्य जो कि यीशु मसीह हैं, हमेशा प्रासंगिक रहेंगे और इसलिए किसी भी विषय पर चिंतन के लिए मान्य होगा जो खुद को नए रूप से प्रस्तुत करता है। उन्होंने स्वीकार किया कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संबंध में उठने वाले कई मुद्दों में से और जिसे वे निश्चित रूप से अपनी चर्चाओं में संबोधित करेंगे, जिम्मेदारी की आवश्यकता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के मामले में एक अनुमानित दंडहीनता है जो एक नए स्तर पर पहुंच जाती है, क्योंकि यह केवल देखने, संचारित करने या अनुपयुक्त सामग्रियों को इकट्ठा करने से आगे बढ़कर कई सिंथेटिक सामग्री के निर्माण तक पहुंच जाती है। उन्होंने कहा, तथ्य यह है कि हमारे अपने हाथों ने इन सामग्रियों का उत्पादन नहीं किया है। यह गलत भ्रम पैदा कर सकता है कि हम कुछ शर्मनाक काम नहीं कर रहे हैं। किसी व्यक्ति पर हमला करना, किसी छवि को चुराना, किसी और की अवधारणा या विचार का उपयोग करना या किसी अंतरंग चीज को उजागर करना जो निजी रहनी चाहिए, लेकिन यह सच नहीं है। उन्होंने चेतावनी देते हुए याद दिलाया, मशीन हमारे आदेशों का पालन करती है, यह निष्पादन करती है, लेकिन अपने आप निर्णय नहीं ले सकती, सिवाय इसके कि ऐसा करने के लिए प्रोग्राम बनाया गया हो। संत पापा ने एआई के जोखिमों के बारे में जागरूक होने की तुलना उस जोखिम से की जो तब होता है जब हम एक शक्तिशाली कार चलाते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रौद्योगिकी का उपयोग करने से ऐसे जोखिम हो सकते हैं जो नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे जब हम एक शक्तिशाली कार में एक्सीलेटर पर पैर रखते हैं या विपरीत लेन में चले जाते हैं। संत पापा ने जोर देकर कहा कि अपनी जिम्मेदारी के ढांचे के भीतर ऐसी तकनीक के उपयोगकर्ताओं और इसके डिजाइनरों, जिन्हें इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, दोनों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। और चालीसा काल 2025 के लिए अपने संदेश में संत पापा फ्रांसिस ने विश्वासियों को आशा में एक साथ यात्रा करने के लिए आमंत्रित किया और आने वाले चालीसा काल के अवसर का लाभ उठाते हुए खुद से पूछा कि क्या हम वास्तव में अपने जीवन को बदलने के लिए ईश्वर के आह्वान पर ध्यान देने के लिए तैयार हैं? संत पापा फ्रांसिस के चालीसा संदेश का मुख्य विषय, आइए हम आशा में साथ साथ यात्रा करें, जो जयंती वर्ष के व्यापक विषय आशा के तीर्थ यात्री से जुड़ा हुआ है। संत पापा का चिंतन हृदय परिवर्तन पर केंद्रित है और तीन प्रमुख आयामों को प्रकट करता है, यात्रा का महत्व, साथ साथ यात्रा करना और आशा के साथ यात्रा करना। चालीसा संदेश का एक मूलभूत पहलू समुदाय और धर्म सभा पर जोर देना है। यह विचार कि ख्रिस्तियों को अलग अलग रहने के बजाय साथ साथ चलना चाहिए। संत पापा हमें याद दिलाते हैं कि पवित्र आत्मा हमें आत्म केंद्रित न रहने और ईश्वर एवं हमारे भाइयों एवं बहनों की ओर चलते रहने के लिए प्रेरित करता है। अबीला की संत तेरेसा का संदर्भ देते हुए संत पापा ने विश्वासियों से सतर्क और धैर्यवान बने रहने का आग्रह किया, यह समझाते हुए कि ईश्वर की प्रतिज्ञा उनके समय पर ही पूरी होगी। संत पापा आशा की इस यात्रा को कुमारी मरियम आशा की माँ की मध्यस्थता को सौंपते हुए समाप्त किया। उधर वाटिकन न्यूज से होम्स के सीरियाई कैथोलिक महाधर्माध्यक्ष जैक्स मोराड ने 8 दिसंबर 2024 को राष्ट्रपति बशर अल असद के पतन के बाद से सीरिया के सामने आने वाली कई अनिश्चितताओं के बारे में बातें की। सीरियाई शासन को गिरे हुए लगभग 3 महीने हो चुके हैं और नए राष्ट्रपति अहमद अलचारा विश्व नेताओं और जनमत को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक नया अंतर सामुदायिक और अंतर धार्मिक सीरिया संभव है। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 25 फरवरी को दमिश्क में राष्ट्रीय संवाद पर 2 दिवसीय सम्मेलन शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य सभी सीरियाई लोगों का प्रतिनिधित्व करना है। महाधर्माध्यक्ष जैक्स ने बताया, हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वह नाजुक है, क्योंकि सीरिया पूरी तरह से कमजोर स्थिति में है और अराजकता की एक निश्चित स्थिति में भी है, विशेष रूप से सुरक्षा के मामले में। हालांकि वह सीरिया और उसके लोगों के भविष्य के लिए आशान्वित हैं। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।